ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भिक्षु गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में भिक्षु गीता प्राप्त है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा उद्धव जी को एक भिक्षु के प्राचीन आख्यान के माध्यम से मनोजय के उपाय समझाए हैं। यदि दुर्जन लोग मन को क्षुब्ध करने वाले आचरण भी करें तो भी मुमुक्षु मनुष्य को उद्वेलित न होकर उन्हें पूर्ण क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सुख अथवा दुख का कारण कोई और नहीं अपितु मन ही है। यही मोहासक्त मन जीव को कर्म बंधन में डालता है। इस मन का किसी भी प्रकार एकाग्र होकर भगवान में लग जाना ही परम योग है। मार्मिक ज्ञानोपदेश वाली यह साधकोपयोगी भिक्षु गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। बादरायणी उवाच स एव माशंसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दाशारह मुख्यः सभाजयन भृत्यवचो मुकुंदस्त माब भाषे श्रवणीय वीर्यः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच बारहस्पत्यस वै नात्र साधुर वै दुर्जनै रीति है दुरुक्तैः भिन्न मात्मानं यह समाधातु मीश्वरः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। न तथा तप्यते विद्धः पुमान बाणैः सुमर्मगैः यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसताम परुशेषवः। मनुष्य का हृदय मर्मवेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बागबाण पहुँचाते हैं। कथयन्ति महत् पुण्य मितिहास मेहोद्भव तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। केन चिद भिक्षुणा गीतम परिभूतेन दुर्जनैः स्मरता धृति युक्तेन विपाकम निज कर्मणाम। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था, उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे, उन्हीं का इतिहास में वर्णन है। अवंतिषु द्विज कश्चिदासीद दाढ़यतमः श्रिया वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धो अतिकोपनः। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। ज्ञातयो अतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः शून्यावसत आत्मापि काले कामै रणर्चितः। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पत्पुत्र बांधवाः दारा दुहितरो भृत्या विशस्ना नाचरण प्रियम्। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युत्स्यो भयलोकतः धर्म काम विहीनस्य चुक्रुदुह पंच भागिनः। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था, बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह तो न धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। तद्वध्यान विस्त्रस्त पुण्यस्कंधस्य भूरिद अर्थोऽप्यगच्छन् निधमनम् बौवा यास परिश्रमः। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। ज्ञातयो जग्रहुः किंचित किंचिद दस्यव उद्धव दैवतः कालतः किंचिद ब्रह्मबंधोर नृपार्थिवात्। उद्धव जी, उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जितः उपेक्षितश्च स्वजनै चिंता माप दुरत्ययाम। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरास्यस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेदः सुमहानुभूत। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। स चाहेद महु कष्टम वृथात्मा मे अनुतापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थास्यास ईदृशः। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के काम ही आया। प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणिनाम गुणाः लोभः स्वल्पो अपि तान हन्ति श्वित्रो रूप मिवेप्सितम्। जैसे थोड़ा सा कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास्त्रा सश्चिंता भ्रमो नृणाम। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम भय चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। इस्तेयम हिंसा नृतम दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसानानि च। एते पंच दशा नर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम तस्माद् नर्थमर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दुरतस्त्यजेत। चोरी हिंसा झूठ बोलना दंभ काम क्रोध गर्व अहंकार भेद बुद्धि वैर अविश्वास स्पर्धा लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों के धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। विद्यन्ते भ्रातरोदाराः पितरः सुहृदस्तथा एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वे अरयः कृताः। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अर्थे नालपीयसा हेते संरब्धा दीप्तमन्यवः त्यजन्त्याशु स्पर्धो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। लब्ध्वा जन्मा मर प्रार्थ्यम मानुष्यम तद द्विजाग्रह्यताम तदनाद्रत्य ये स्वार्थम घनन्ति यान्त्य शुभाम गतिम। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्गाप वर्ग योर द्वारम प्राप्य लोकमिमं पुमान द्रविणे को अनुसज्जेत मर्त्यो अनर्थस्य धामनी। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातीन बंधुश्च भागिनः असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। व्यर्थ यार्थे हया वित्तम प्रमतस्य वयो बलम कुशला येन सिद्ध्यन्ति जरठः किं नु साधये। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा। कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थ यार्थे हयास्कृत कस्य चिन् मायया नूनम लोको अयम शिव मोहितः। तुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो, अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। किम धनैर् धन दैर्वा किम कामैर्वा काम रैदुत दैरुत मृत्युना ग्रस्य मानस्य कर्म भिर्वोत जन्मदैह। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है, इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। नूनम मे भगवान तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुँचाया है और मुझे इस जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान हैं। सो अहम कालावशेषेण शोयजिष्ये अंगमात्मनः अप्रमत्तो अखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्धो आत्मनि। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा, और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तत्र माम नु मोदेरेन देवास्त्रे भुवनेश्वरा मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खटवांग समसाधयत। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें, अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो दो घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। श्री भगवान उवाच। इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावंत्यो द्विज सत्तमः उन्मुच्य हृदय ग्रंथीन शांतो भिक्षुरन भून मुनिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। सचार महिमेताम संयतात्मेन्द्रिय यानिल भिक्षार्थम नगर ग्रामान संगो अलक्षितो अविशत। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। तम वै प्रवयसम भिक्षुम बधूतम सज्जना दृष्ट्वा पर्य भवन भद्र बहुविभिः परिभूतिभिः। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करके के चित्रेमेणुम जग्रहुरे के पात्रम कमंडलम कमंडलुम पीठम चैके अक्षसूत्रम च कंथाम चीराण केचन। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन रुद्राक्षमाला और कंथा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देता। प्रदाय च पुनस्तानी दर्शितान्याद दुर्मुनेह अन्नम च भैक्ष्य संपन्नम भुंजानस्य सरितटे मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनी यतवाचम वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखलाकर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांगकर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी कभी उसके सिर पर मूत्र कर देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। तर्जयंत्य परे वाग्भिः स्तेनो अयमिति वादिनः बध्नन्ति रज्ज्वा तम केचिद् बध्यताम बध्यतामिति। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। क्षिपत्येते अवजानंत एष धर्मध्वज शठः क्षीणवित्त इमाम वृत्तिम ग्रहीत स्वजनोज्झितः। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। अहो एष महासारो धृतिमान गिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थम बकवद दृढ़ निश्चयः। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। इत्येके विहसन्त्ये नमेके दुर्वातयन्ति च तं बबन्धुर निरुरुधुर यथा क्रीडनकम द्विजम। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। एवं स भौतिकम दुःखम दैविकम देहिकम च यत् भोक्तव्यामात्मनो दिष्टम प्राप्तम प्राप्तम बुद्धयत्। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। परिभूत इमाम गाथा मगायत नराधमैः पातयद्भिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्विकीम। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ना द्विज उवाच नायम जनों में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाह मनः परम कारणम मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है, और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं, और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। मनोगुणान वै सृजते बलियस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सर्वणां श्रतयो भवन्ति। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सक उद्विचष्टे मनः स्वलिंगम परिग्रहीय कामान जुषन निबद्धो गुणसंगतो असौ। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो हि योगो मनसः समाधिः। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। समाहितम यस्य मनः प्रशांतम दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम असंयतम यस्य मनो विनश्यद दानादिभिश्चेद परम किमेभिः। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। मनोवशे अन्य हय भवन स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशम समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान युञ्ज्याद वशे तम स हि देवदेवः। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देवदेव इंद्रियों का विजेता है। तम दुर्जयम शत्रुम सह्य वेग मरुन्तुदम तन्न विजित्य केचित कुर्वन्त्य सद्विग्रहमत्र मर्त्यैर मित्रान्यु दासीन रिपून विमूढ़ाः। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे। परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। देहम मनोमात्रमिमं गृहीत्वा मामाह मित्यंध धियो मनुष्याः एषो अहमन्यो अयमिति भ्रमेण दुरंतपारे तमसि भ्रमन्ति। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञानांधकार में ही भटकते रहते हैं। जनस्तु हेतु है सुख दुख योश्चेत किमात्मा मनश्चात्र भौम योस्तत जिह्वां क्वचित संदशति स्वद्भिस्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। दुखस्य हेतुर यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकार योस्तत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण हैं तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु किमन्यतस्तत्र निज स्वभाव न ह्यात्मनो अन्यद यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखम न दुखम। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। इसलिए न सुख है न दुख, फिर क्रोध कैसा, क्रोध का निमित्त ही क्या। ग्रहानिमित्तम सुख दुख योश्चेत किमात्मनो अजयस्य जनस्य देवई ग्रहै ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततो अन्यः। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि, उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, तब भला वह किस पर क्रोध करे। कर्मास्तु हेतु है सुख दुख योश्चेत किमात्मनस्तद्देह जड़ा जड़त्वे देहस्त्वचित पुरुषो अयम सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै नहि कर्म मूलम। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हित अहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हित अहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। कालस्तु हेतु है सुख दुख योश्चेत किमात्मनस्तत्र तदात्मको असौ नाग्नेर्हि तापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वंद्वम्। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। न केनचित क्वापि कथंजनास्य द्वंद्वोपरागः परतः परस्य यथा हमः संस्कृति रूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः। आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। एताम स आस्थाय परमात्मनिष्ठा मध्यासिताम पूर्वत मयूर महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रि निषेवयैव। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है, मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। श्री भगवान उवाच, निर्विद्य नष्ट द्रविणो गतक्लमः प्रव्रज्य गाम पर्यटमान इत्थम निराकृतो असद्भिरपि स्वधर्माद कंपितो अमुम मुनिराह गाथाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, सुख दुख प्रदो नान्यः पुरुषस्यात्म विभ्रमः मित्रो दासी नरिपवः संसारस्तमसः कृतः। इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहाण मनोधिया मैया वेशितया युक्त एतावान योग संग्रह। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। य एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्मनिष्ठा समाहितः धारयच्छ्रावय श्रणवन द्वंद्वैः नैवाभिभूयते। यह भिक्षुक का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंधे भिक्षु गीता संपूर्णा। जय श्री राम।